दीवा को अचानक अपनी कजन सिस्टर इनाया के स्कूल जाना पड़ा क्योंकि इनाया ने स्कूल में किसी से झगड़ा कर लिया था। दीवा वहां अपने स्कूल के क्लासमेट समय अरोरा से मिली। उसी की मदद से उसने इनाया को एक्सपेल होने से बचा लिया था। आज दीवा का दिन काफी मुश्किल भरा रहा था। वो घर आई तो उसे सुमन माँ ने बताया कि आर्यांश उसके कॉल का वेट कर रहा था। हालांकि इतने थकने के बाद दीवा का आर्यांश से बात करने का कोई मन नहीं था, फिर भी सुमन माँ के बार बार कहने पर दीवा को आर्यांश को कॉल करना ही पड़ा। दीवा ने जैसे ही आर्यांश को कॉल किया, उसके सवाल जवाब फिर से शुरू हो गए थे कि वो कहाँ थी और उसे आने में टाइम कैसे लग गया। आर्यांश के इरिटेटिंग सवाल सुनकर दीवा का मन किया कि वो फोन के अंदर घुसकर आर्यांश के बाल नोच ले। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करके धीरे से कहा, मेरी कजिन सिस्टर के स्कूल जाना पड़ा था, आज उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और क्या प्रॉब्लम हो गई थी उसे? आर्यांश ने आगे पूछा। कुछ लड़कियां उसे जानबूझकर उकसा रही थीं और उससे झगड़ा करने लगी। गुस्से में नाया ने उनमें से एक को थप्पड़ लगा दिया था। बस उसी सिलसिले में स्कूल जाना पड़ा। दीवा ने शॉर्ट में सारी कहानी बता दी। क्या अब मामला सुलझ गया है? आर्यांश ने दीवा की चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, अब सब ठीक है, दीवा ने जवाब दिया। आर्यांश के सवाल खत्म हो चुके थे तो दीवा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब आर्यांश कॉल कट कर देगा, लेकिन तभी कुछ पल रुककर आर्यांश ने इंटेंस वॉइस में कहा, मिस गोयनका, आगे से तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो या इस तरह की सिचुएशन हो तो तुम सबसे पहले मुझे याद करोगी। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आर्यांश को खुद की फिक्र करते देख दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोली, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम हो आर्यांश कपूर। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ, जहाँ जब तुम्हारा मन किया तुम प्यार से पेश आते हो और जब मन किया गुस्सा दिखाते हो। दीवा को काफी देर तक चुप देखकर आर्यांश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, दीवा ने जवाब दिया। फिर उसने बात को टालते हुए आर्यांश से पूछा, आपने खाना खा लिया क्या? हाँ, आर्यांश इतना ही बोला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। दीवा उसे खाना खाने के बारे में ऐसे पूछ रही थी जैसे वो कोई नया नया कपल हो। आपको बहुत काम होगा ना? मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप आराम से अपना काम कर लीजिए, दीवा ने कहा। कॉल कट करने के लिए उसे और कोई बहाना नहीं सूझा तो उसने यही बोल दिया, हाँ गुड नाइट, डिनर करने के बाद में सो जाना, आर्यांश ने जवाब दिया और एक नज़र खिड़की के बाहर देखी। ऑस्ट्रेलिया में अभी सुबह का वक्त था और सूरज की रोशनी खिली हुई थी। हाँ, आप भी देर तक काम मत करना और जल्दी सो जाना, अचानक दीवा के मुंह से निकला। फिर उसे एहसास हुआ कि आर्यांश इस वक्त एक ऐसी जगह है जहाँ रात के बजाय दिन है। वहीं आर्यांश के चेहरे पर इस वक्त तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने सिर हिलाकर कहा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो, क्या सच में तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? हे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ध्यान नहीं रहा, बाय, मैं अब सोने जा रही हूँ, दीवा ने झेमते हुए कहा। आर्यांश को उसे छेड़ना अच्छा लगता था तो वहीं दीवा को भी अब इस छेड़छाड़ की आदत होने लगी थी। उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया था। दीवा से बात करने के बाद आर्यांश के चेहरे के भाव फिर से गंभीर हो गए। वो अपने पहले प्यार को कितना भी भूलने की कोशिश क्यों न कर ले, पर सच ये था कि वो चाहकर भी उसे भुला नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ दीवा डिनर के बाद सोने के लिए चली गई थी। अगली सुबह तैयार होने के बाद उसका रूटीन शुरू हो गया था। वो हॉस्पिटल पहुंची तब उसे डॉक्टर निश्चय व्यास दिखाई दिए। निश्चय ने हमेशा की तरह उसे फाइलों का एक ढेर देते हुए कहा, आपको इन सभी केस की स्टडी करनी है, जानती है ना ये कौन से केस हैं? हाँ, समझ गई, ये वही केस हैं जिन पर डॉक्टर मल्होत्रा काम नहीं करना चाहते। पता नहीं वो इतने अजीब क्यों हैं, वो कभी भी उन पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते जिनकी सर्जरी फंड के तहत हो रही हो, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे और इन्हीं अमीर आदमियों से वो अपनी दुकान चलाएंगे। तुम ऐसी नहीं हो, निश्चय ने मुस्कुराकर कहा। एक पल के लिए वो दीवा के मासूम चेहरे में खो गया था। दीवा ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, मुझे उन पेशेंट्स को ट्रीट करना ज्यादा अच्छा लगता है जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते तो मुझे उनकी मदद करके और भी अच्छा फील होता है। दीवा की यही खासियत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। शायद इसी वजह से निश्चय और हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ उसे पसंद करता था। दीवा फाइलों के साथ जाने के लिए मुड़ी तभी पीछे से निश्चय ने कहा, आज दोपहर को साथ में लंच करें डॉक्टर गोयनका। दीवा नासमझ नहीं थी कि उसे निश्चय की आंखों में जज्बात न नजर आए। उसने गहरी सांस ली और फिर निश्चय की तरफ पलटकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको मना नहीं करती लेकिन दोपहर को मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, लंच भी मुझे केबिन में ही करना होगा। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे, निश्चय ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। दीवा भी वापस अपने केबिन में आ गई थी। फाइलें पढ़ने के बाद दीवा एक बार राउंड लगाने के लिए वार्ड में जाने लगी। दीवा जैसे ही सौरभ बजाज के कमरे के अंदर घुसी तो उसने देखा सौरभ के सामने एक लड़का बैठा हुआ था जिसने ब्लैक पैंट्स के ऊपर लूज व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। कैजुअल्स में भी वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। उसके बाल गोल्डन ब्राउन थे, इस वजह से वो इंडियन कम एक ब्रिटिशर ज्यादा नजर आ रहा था। वो प्रियंक बजाज था, सौरभ का बेटा। उसने सौरभ से काफी शांत लहजे में पूछा, आप ठीक है ना? आपने तो हम सबको डरा ही दिया था,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मैं हमारी काबिल डॉक्टर गोयंका से मिलाता हूँ। सच कहूँ तो अगर ये नहीं होती तो मेरी जान बचाना मुश्किल था, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दीवा की ओर इशारा किया जो अभी अभी वहाँ आई थी। प्रियंक जल्दी से खड़ा हुआ और फिर दीवा के सामने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो बोला, थैंक यू डॉक्टर गोयंका, पापा अगर किसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वो सच में तारीफ के काबिल है। दीवा एक नजर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। आर्यांश दिखने में हैंडसम था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उसका कजिन भी दिखने में इतना अच्छा होगा। दीवा ने उसकी तरफ हल्का सा जवाब में मुस्कुराया और बोली, मिस्टर बजाज, ये हमारा काम है, फिर भी आप अपना काम काफी अच्छे से और ईमानदारी से कर रही हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम शाम को डिनर के लिए चलें। ये मेरी तरफ से बस एक थैंक्सगिविंग डिनर है और कुछ नहीं। प्रियंक ने मौका देखकर तुरंत उसे डिनर के लिए इन्वाइट कर लिया था। अरे नहीं मिस्टर बजाज, अब आप ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैंने कहा ना ये हमारा काम है। और आई एम रियली सॉरी, मैं आज डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैंने पहले ही किसी को कमिटमेंट दे रखी है, दीवा ने अफसोस भरे भाव के साथ कहा। दीवा ने जानबूझकर मना कर दिया। वो जानती थी कि सौरभ बजाज और आर्यांश के बीच बिल्कुल नहीं बनती, यहाँ तक कि आर्यांश उसे इतनी नफरत करता है कि मौका देखकर उसे मारने तक का सोच रहा था। सौरभ से इतनी नफरत करने वाले आर्यांश को प्रियंक भी नहीं पसंद होगा, ये जाहिर सी बात थी। अगर वो प्रियंक के साथ डिनर पर जाती और इस बारे में आर्यांश को पता चलता तो वो उसकी जान ले लेता। दीवा ने अकेला छोड़कर वहां से चली गई। प्रियंका डिनर प्रपोजल एक्सेप्ट करके वो आर्यांश से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती थी। वहीं दीवा के वहां से निकलते ही उनकी असली बातचीत शुरू हो गई थी। प्रियंक के चेहरे के भाव सर्द थे, उसने सख्त आवाज में पूछा, पापा क्या ये वही लड़की है जिसे आजकल आर्यांश डेट कर रहा है?
दीवा के सामने वो काफी सॉफ्ट और अच्छा होने का दिखावा कर रहा था, तो वहीं उसके जाते ही वो बिल्कुल किसी चालाक लोमड़ी की तरह लगने लगा। हाँ ये वही है, और जहां तक मैंने पता लगाया है वो दोनों साथ में रहने लगे हैं, सौरभ ने गहरी सांस भरकर कहा। क्या इतनी जल्दी? प्रियंक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। अगर ये लड़की हमारे काम आई तो हमारे लिए आर्यांश को हराना मुश्किल नहीं होगा, बस ये सोचो कि इसे कैसे अपने मोहरे के तौर पर सही रूप से इस्तेमाल करें, सौरभ ने जवाब दिया। वो कुछ पल रुककर प्रियंक से बोले, प्रियंक तुम्हें कुछ भी करके उस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की है जो मेरे चार्म से बच सके, प्रियंक ने खुद की तारीफ में कहा। उसके सामने हमेशा पोलाइट रहने का दिखावा करो, मुझे वो लड़की थोड़ी सीधी नजर आ रही है, तो उसके सामने भी सीधा सच्चा बनने का दिखावा करो, सौरभ उसे समझाते हुए बोला। बिल्कुल डैड, प्रियंक बोला। अब वो पहले की तरह विनम्र और सीधा बनने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद प्रियंक अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, डैड मैं कपूर इंटरनेशनल जा रहा हूँ, आर्यांश यहाँ नहीं है तो हमें मौके का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए, ऊपर से उसके आने तक उसके गर्लफ्रेंड को भी तो इम्प्रेस करना है। सौरभ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। प्रियंक उसके ऑफिस से बाहर निकल गया था। वो हॉस्पिटल से बाहर जाने के बजाय दीवा को ढूंढते हुए उसके पास जा रहा था। प्रियंक अच्छे से जानता था आर्यांश की नज़र पर चीज डालना आग से खेलने मुताबिक था, उसके बावजूद वो जानबूझकर दीवा से मिलने जा रहा था। इससे खतरा प्रियंक को नहीं बल्कि दीवा को ही था।